हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। और एक और बात, तुम मेरा सबसे बड़ा हथियार है। तुझे मैंने ऐसे इंसान के अंदर डाला है जो इंसानी दुनिया में अमन का दुश्मन है, अमन का राइवल है, समझा तू? जैसे काली शक्तियों के महागुरु ने ये कहा, अक्षत उन्हें देखने लगा था और अचानक ही अक्षत का जिस्म का रंग बदलने लगा था और वो एकदम भयानक काले रंग में बदल चुका था और उसका हैंडसम सा चेहरा एकदम से ही इतना भयानक और कुरूप दिखाई दे रहा था कि कोई भी उसे देख रहा था तो डर के मारे हार्ट अटैक ही ना आ जाए। और तब वो जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, काली शक्तियों के महागुरु, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने मुझे एक गहरे मकसद के लिए चुना है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। और वैसे भी जब से मैंने उस जिन महाराज की बीवी को देखा है, मेरे यकीन मानो मेरा ईमान भी डोल गया है। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी है। आप मेरा यकीन माने ना माने, लेकिन वो लड़की तो मुझे इंसान भी नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि वो तो कहीं की अप्सरा हो। तभी काली शक्तियों के महागुरु महागुरु अपने उस असुर पर चिल्लाते हुए बोले थे, चुप कर नादान मूर्ख, एक औरत की खूबसूरती के जाल में तू नहीं आ सकता है। अगर तू औरत की माया में फंस गया तो कभी भी जिन महाराज अमन की बीवी को नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। तुझे औरत की खूबसूरती के माया जाल से बचकर रहना होगा। अगर एक बार तू औरत की खूबसूरती के जाल में फंस गया तो तू चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। और तुझे जिस काम के लिए मैंने भेजा है तो सिर्फ और सिर्फ उस काम को पूरा कर। और जिस इंसान के अंदर इस वक्त तेरी आत्मा है, इस इंसान अक्षत की आत्मा इस वक्त हमारे कब्जे में है, और जिस दिन इसकी आत्मा हमारे कब्जे से आज़ाद हो गई तो ये उसकी आत्मा अपने आप उसके जिस्म में लौट आएगी और तू हमेशा हमेशा के लिए नर्क में चला जाएगा। तो इससे पहले तुझे अपना काम पूरा करना होगा। और अगर तूने वक्त रहते जिन महाराज अमन से तिलस्मी पत्थर हासिल कर लिया, साथ ही साथ उसकी खूबसूरत बीवी तारा को अगवा कर लिया और जिन महाराज के जिन्नातों के वंशज का खात्मा कर दिया, तो मैं तुझे महारक्षक, कारी शक्तियों के महारक्षक की उपाधि दूंगा। अब तू सोच ले तुझे क्या करना है। ऐसा कहकर काली शक्तियों के महागुरु वहां से गायब हो चुके थे। वहीं अक्षत के रूप में असुर जोरों से हंसने लगा था और कहने लगा था, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, अब देखना मैं किस तरह से जिन महाराज माँ की बीवी को अगवा करूंगा और उसे अपना बनाऊंगा। वैसे भी उसकी खूबसूरती देखने के बाद मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा है। वैसे भी मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है और उसकी खूबसूरती ही मेरी जिंदगी में रोशनी बिखेर सकती है। कहीं ना कहीं ये सोचते हुए अक्षत खुराना यानी कि वो असुर मुस्कुराने लगा था। वहीं दूसरी ओर काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका के साथ बैठा हुआ था। मल्लिका अच्छी तरह से जानती थी कि इस वक्त काली शक्तियों का मालिक अमित काफी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि पहली बार काली शक्तियों के महागुरु ने उसे साफ साफ कहा था कि वो किसी काम का नहीं और वो काफी ज्यादा बेवकूफ है। कहीं ना कहीं मल्लिका भी ये बात मानती थी, लेकिन वो उसके सामने इस बात को नहीं कह सकती थी, क्योंकि भले ही अमित बेवकूफी का नाटक किया करता था या बेवकूफ पन दिखाया करता था, लेकिन अमित के पास भी कुछ ऐसी शक्तियां थीं जो किसी से कुछ भी करने की हिम्मत और ताकत दोनों ही रखती थीं। इसीलिए मल्लिका ने अमित से किसी तरह की कोई दुश्मनी लेना जरूरी नहीं समझा था। उसने तो सोच लिया था कि अगर अक्षत वाकई तारा को अमन से अलग कर सकता है तो उसका काम आसान हो सकता है और वो आसानी से अमन की जिंदगी में जा सकती है। वैसे भी वो अमन के अलावा वो किसी और के बारे में सोचा ही नहीं करती थी। वेल, तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि अमित के हाथ उसकी कमर पर चल रहे थे। ये देखकर महसूस कर मल्लिका के माथे पर सिलवटें उभर आई थीं और वो कहने लगी थीं, काली शक्तियों के मालिक, आप ये क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बना सकते हैं। अगर आपने मेरे साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने की कोशिश की तो आपकी शक्तियाँ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं। तभी काली शक्तियों का मालिक अमित मल्लिका को डांटते हुए कहने लगा था, तुम्हें ज्यादा कुछ कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बना रहा हूँ। वैसे भी तू एक बूढ़ी औरत है जिसको मैंने अपने काले साए के द्वारा जवा बनाए रखा है और तुझे मैंने अपने मनोरंजन के लिए रख रखा है और आज मैं काफी ज्यादा उदास हूँ और दुखी हूँ, तो तुझे चाहिए कि तू मेरी उदासी को दूर कर, अपने इस दिखावटी जिस्म की नुमाइश कर और मुझे खुश कर। हाँ, मैं तेरे साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन बाकी सब कुछ तो कर सकता हूँ। ऐसा कहते हुए जल्दी ही अमित ने अपने होठों को मल्लिका के बाहरी खूबसूरत जिस्म पर चलाना शुरू कर दिया था और मल्लिका चाहकर भी उसे रोक नहीं पाई थी क्योंकि अमित का छुन उसे काफी ज्यादा घिन से भर दिया करता था, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अमन के साथ इस तरह का रिश्ता बनाना चाहती थी, लेकिन काली शक्तियों के मालिक अमित की वजह से वो मजबूर हो जाया करती थी और वो अच्छी तरह से जानती थी कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। जल्दी ही अमित ने अपनी उदासी दूर करने के लिए मल्लिका के जिस्म का सहारा लेना शुरू कर दिया था और उसने बड़ी ही बेदर्दी से उसके जिस्म पर काफी ज्यादा निशान छोड़ दिए थे और उसे काफी ज्यादा उसने तकलीफ दी थी। उसने भले ही उसके साथ जिस्मानी रिश्ता नहीं बनाया था, लेकिन उसने इतनी बुरी तरीके से उसके साथ बिहेव किया था जिसके बाद से मल्लिका को काफी ज्यादा घिनसी आने लगी थी। लेकिन वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाई थी। करीब 3 घंटे तक जब अमित का मन थोड़ा सा शांत हुआ, तब जाकर उसने मल्लिका को छोड़ा था। तब मल्लिका की आंखों गुस्से और नफरत भर उठा था और वो अचानक अपने कमरे में जाकर उसने खुद को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद कपड़े पहन लिए थे और अपनी जादुई शक्ति से अपने जिस्म के निशानों को छुपा लिया था। और उसके बाद मल्लिका कुछ देर शीशे में खुद को देखने लगी थी और कहने लगी थी, काली शक्ति के मालिक अमित, बस कुछ दिन और तुम मुझ पर इस तरह का बिहेव कर सकते हो, उसके बाद तुम देखना मल्लिका तुम्हें मुंह के बल गिराएगी। ये सोचते हुए वो मुस्कुराने लगी थी। कहीं ना कहीं मल्लिका के दिलो दिमाग में एक अलग तरह का प्लान जन्म ले चुका था। वहीं दूसरी ओर जिन महाराज अमन ने तारा के साथ पूरी रात ही रिश्ता बनाया था, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश थे। अमन का प्यार पाकर तारा सब कुछ भूल चुकी थी। उसके जैसा लगने लगा था मानो किसकी जिंदगी में किसी तरह का कोई दुख दर्द था ही नहीं। तभी अचानक अमन तारा को अपने हाथ बाजू पर लिटाते हुए उसे कहने लगा था, तुम जानती हो उस राक्षस के अंश ने जब तुम्हें पिशानियों के जंगल में उस फूलों से भरे बेड पर लिटा रखा था, उस वक्त मुझ पर क्या गुजरी थी। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उसी वक्त उस पूरे के पूरे जंगल को आग लगा दूं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें लेकर कितना ज्यादा पजेसिव हो चुका हूं। मैं तुम्हारे जिस्म पर किसी की परछाई तक नहीं बर्दाश्त कर सकता हूं। और जैसा कि हमने दोनों ने पिछला जन्म साथ में देखा है, तो मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि वो राक्षस का अंश एक बार फिर आएगा और हो सकता है कि इस बार वो राक्षस ही आए। इसीलिए हमें बड़ी ही सावधानी से कदम रखना होगा और तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। तुम हर सिचुएशन में मेरे साथ रहोगी, क्योंकि वो तुम पर हमला करने की पूरी कोशिश करेगा और तुम्हें मुझसे छीनने की भी कोशिश करेगा। जैसे ही अमन ने राक्षस की बातें करना शुरू किया, तारा की आंखें भर आई थीं और उसे अपनी माँ की कही हुई बातें याद आने लगी थीं।
रानी माँ ने उसे कहा था कि राक्षस के अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो गया था। इसका मतलब साफ था कि बहुत जल्द राक्षस अपनी मूर्छित अवस्था से बाहर आने वाला था। उसका 2 साल का समय पूरा होने वाला था। तारा के पास भी अब ज्यादा समय नहीं था। वैसे भी उसे पृथ्वी पर रहते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका था। इन 1 सालों में उसने अमन को ढूंढा था, उसके साथ जिस्मानी रिश्ता बनाया था और इतना ही नहीं, कितनी सारी चुनौतियों का सामना भी किया था। तो कहीं ना कहीं तारा सही बातें सोच रही थी और उसका बार बार दिल भर कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि धरती पर उसके ज्यादा दिनों की लाइफ नहीं है। बहुत जल्द उसे पृथ्वी से जाना होगा, उसे अपने अमन से दूर जाना होगा। तारा को पृथ्वी से जाने का दुख नहीं था, तारा को अमन से दूर जाने का दुख था। लेकिन तारा ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि अगर अमन को ये पता चल गया कि मैं कौन हूँ और मैं इस पृथ्वी पर क्या करने के लिए आई हूँ, तो वो मुझे किसी भी कीमत पर वापस जाने नहीं देगा, और अगर अमन ने मुझे जाने नहीं दिया तो वो राक्षस सभी लोगों में तबाही मचा देगा। वेल, तारा ये सारी बातें सोचती रही थी और अमन और तारा लिखट्टी मीठी बातों के बीच सुबह हो चुकी थी। और जैसे ही अगली सुबह तारा और अमन नाश्ता करने के लिए नीचे आए, करिश्मा और अमरेंद्र जी भी आ गए थे। कहीं ना कहीं बार बार करिश्मा तारा को देख रही थी और तारा करिश्मा को देख रही थी, और दोनों आंखों ही आंखों में शर्मा रही थी। दोनों काफी हद तक खुश थीं अपने अपने पतियों का प्यार पाकर। तभी अचानक से अमन का फोन बजने लगा था। जैसे ही अमन ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से किसी और का फोन नहीं बल्कि काली शक्तियों का मालिक अमित का फोन था। अमित का फोन आने पर अमन ने उसे कहा था, क्या हुआ है, तुमने इतनी सुबह सुबह मुझे फोन क्यों किया है। तभी अमित अमन के ऑफिस का कंसर्न दिखाते हुए अमन से कहा था। अमित का फोन आने पर तारापरी का मन अंदेशों से घिर गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं तारापरी को अमित की सच्चाई अच्छी तरह से पता थी कि अमित आखिरकार है कौन और अमित अमन का कितना बड़ा दुश्मन है। वो ये बात अच्छी तरह से जानते थे। तो इतनी सुबह अमित का फोन आना तारापरी को कितने ही सारे अंदेशों में घिर चुका था। और तब अचानक तारापरी ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दूसरी तरफ से अमित की बात सुनने की कोशिश की थी। फिर कहीं ना कहीं वो इस बात के बारे में पता लगाना चाहती थी कि कहीं कहीं अमित एक बार फिर किसी तरह की कोई चाल तो नहीं चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तारा को पूरा का पूरा यकीन था अमित तिलिस्मी पत्थर हासिल करने के लिए कोई ना कोई नई चाल जरूर चलेगा। तो तारापरी अमित के हर कदम पर नजर रखना चाहती थी, साथ ही साथ वो इस बात के बारे में अमन को भी बताना चाहती थी कि आखिरकार अमित क्या
चीज है और वो कितना बड़ा धोखेबाज है और वो अमन को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कहीं ना कहीं तारा ने ठान लिया था कि वो परीलोक वापस जाने से पहले अमित की पूरी सच्चाई अमन के सामने लाकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए। वहीं दूसरी ओर फोन पर अमित ने कहना शुरू कर दिया था, देखो अमन, मैं जानता हूँ मुझे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। तुम्हें काफी सारी फाइल्स पर सिग्नेचर करने हैं, कितने सारे लोगों से इम्पोर्टेंट मीटिंग करनी है। इतना ही नहीं, मैं तुझे उसके साथ साथ एक खास बात और बताना चाहता हूँ। जितने भी हमारे ऑफिस में मिलने वाले टेंडर थे उन्हें अक्षत खुराना ने अपने नाम कर लिया है। क्याया याया जैसे ही अमन ने ये सुना उसका हैरानी के मारे बुरा हाल हो गया था। वो कहने लगा था, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला हमारी कंपनी के टेंडर अक्षत खुराना की कंपनी को कैसे जा सकते हैं। तभी अमित थोड़ी सी सीरियस आवाज में बोला था, मैं जो कुछ कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो तुम जल्द से जल्द ऑफिस जाकर चेक कर सकते हो। तब अमन ने अमित से कहना शुरू कर दिया था, अगर तुम कह रहे हो तो बात ठीक ही होगी, इसके लिए मुझे जाकर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ, साथ ही साथ इस बात के बारे में पता लगाओ अक्षत करना क्या चाहता है और ये हमारे पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है और अचानक से ये इतना ज्यादा आक्रामक कैसे हो गया है। क्योंकि अक्षत पहले भी हमारे साथ कॉम्पिटिशन में रहा है, वो हमारे हमसे आज तक एक भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल नहीं कर पाया और ना ही आज तक अक्षत के हाथ हमारा एक भी कॉन्ट्रैक्ट गया था। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि अक्षत के हाथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट जाने लगे हैं। जैसे ही अमन ने ये कहा अमित कुछ सोचते हुए बोला था, अब इसके बारे में मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि अक्षत ने तो इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हासिल कर लिए, इसके लिए तो तुम्हें खुद ही आकर चेक करना होगा। तुम अच्छी तरह से जानते हो भले ही मैं किसी भी तरह से सोच लूं, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग है उसके बलबूते पर ही हम हर बार कॉन्ट्रैक्ट हासिल करते थे। तब अमन कुछ देर सोचता हुआ बोला था, अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, तुम सारी डिटेल कलेक्ट करके रखो।